तभी पल्लवी आगे बढ़ी और बोली, अरे ये तो सब कुछ तय करके बैठा हुआ है, हम तो बेकार में ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। अभिमन्यु जो इतनी देर से अपनी चाची जी की बातें सुन रहा था, उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब अगर किसी ने भी अर्पिता और समर्थ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्पिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके पास आई और उसने मासा और अभिमन्यु की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, भाई सा, मासा, हमने हमेशा आप लोगों की बातें मानी हैं और जब जब जैसा जैसा आपने हमें करने के लिए कहा हमने वैसा ही किया है, लेकिन अब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। हमें समर्थ पर पूरा भरोसा है, हम उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। मासा, हमें प्लीज़ उनके साथ रहने दीजिए, प्लीज़। इतना बोलते बोलते अर्पिता वहीं ज़मीन पर बैठ गई। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम अब समर्थ की पत्नी हो और तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा। अभिमन्यु ने इतना बोलकर वहीं खड़े घर के नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता पर सारा सामान पैक करके लेकर आओ। अर्पिता समर्थ की तरफ देख रही थी, तभी समर्थ आगे बढ़कर आया और मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, हमें सिर्फ अर्पिता से प्यार है, चाहे आप हमारे रिश्ते को ना माने, लेकिन आज नहीं तो कल आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी, हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभिमन्यु ने अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। अर्पिता, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, तुम इस घर की बेटी हो और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अर्पिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके गले लग गई। मासा ने जब अभिमन्यु को ये बात बोलते हुए देखा तो वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और उन्होंने अब अर्पिता और समर्थ की तरफ से अपनी नज़रें फेर लीं। मासा को ऐसा करते देखकर अर्पिता ने माँ की तरफ देखा। अभिमन्यु ने अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे ना में इशारा करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अर्पिता, हमें लगता है कि अभी आपको मासा से और कोई बात नहीं करनी चाहिए। समर्थ ने भी अर्पिता को समझाते हुए कहा, हाँ, वैसे भी अभी इस टाइम मासा शायद थोड़े गुस्से में हैं, उनसे अभी अगर हम बात करेंगे तो बात और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे ही समर्थ ने अर्पिता से ये बात कही, अर्पिता बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन उसकी नज़रें मासा की तरफ ही थीं। उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो माता के खिलाफ जाकर समर्थ के साथ जाए। तभी अर्पिता के बगल में आकर इप्सिता खड़ी हुई और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्पिता, आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए, रही बात मासा की तो कोई भी माँ अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती, आप उन्हें बाद में मना लीजिएगा। इप्सिता की बात सुनकर अर्पिता ने मासा की तरफ से अपनी नज़र हटाते हुए इप्सिता के गले लग गई। वहीं अभिमन्यु ने अर्पिता का सारा सामान समर्थ की गाड़ी में रखवाया और उसने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप अर्पिता को लेकर जा सकते हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बातें कहीं, मासा अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभिमन्यु, जब से आप राजा बने हैं आप हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं, पहले आपने इप्सिता को लेकर वो फैसला लिया और अब। मासा अभिमन्यु की तरफ गुस्से से देख रही थी और वो बिना अभिमन्यु का जवाब सुने ही वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। अर्पिता ने मासा की तरफ देखा और तभी इप्सिता ने मासा की बात सुनी और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दीजिए अर्पिता, कोई फायदा नहीं है, मासा अभी गुस्से में है, वो आपकी क्या किसी की भी बात नहीं सुनेंगी। अभिमन्यु ने समर्थ की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया और उसने अर्पिता को वहां से ले जाने के लिए कहा। समर्थ ने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ा और उसे महल से बाहर लाने लगा। तभी अभिमन्यु और इप्सिता भी एक साथ महल से बाहर निकले। अर्पिता महल छोड़कर बाहर निकल रही थी और तभी इप्सिता ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया। अभिमन्यु ने समर्थ और अर्पिता की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, अभी आप दोनों जाइए, कल हम आपसे मिलने आएंगे, और समर्थ, अर्पिता का ध्यान रखना। समर्थ ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम उसकी फिक्र मत करो। उसने अर्पिता को कार में बिठाया। अर्पिता जैसे ही कार में बैठी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे इतना इमोशनल होते देखकर अभिमन्यु भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज ऐसा लग रहा है हमने अपनी बहन को फिर से एक बार विदा कर दिया। अर्पिता कार में बैठ गई थी और समर्थ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने तुरंत अपनी कार महल से बाहर निकाल ली। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ सही तो लग रहा है आपको, अर्पिता इस बार भी यहाँ से विदा हुई है और इस बार उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है, अब वो समर्थ के साथ कम से कम खुश तो रहेगी। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और जैसे ही वो राजमहल के अंदर आया उसकी नज़र पल्लवी और नरेंद्र पर गई और उसने उन दोनों को गुस्से से देखा। अभिमन्यु कुछ बोलने चाह ही रहा था कि तभी इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और वो अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे सीधे रूम में लेकर आ गई। उसने अभिमन्यु को वहीं रूम में लाकर बेड पर बैठाते हुए कहा, क्या बोलते जा रहे थे आप चाचा चाची से, अभी आप उनसे जो कुछ भी बोलेंगे वो उस बात का उल्टा ही जवाब देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी इस टाइमिंग में कुछ भी ना कहें। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और इप्सिता वहीं अभिमन्यु के बगल में बैठकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, मासा से बात करने कब जाएंगे आप। अभिमन्यु ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, अभी वहां अगर हम गए तो मासा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा नहीं उन्होंने किस तरह से हम पर चिल्लाते हुए हमें गलत ठहराया। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु को शायद ये बात कहीं ज्यादा बुरी लगी थी और तभी उसने अभिमन्यु के कंधे पर अपना सिर रखकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगले दिन सुबह सूर्यवंशी हवेली में सब कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल था। नंदिनी घर के बाकी सर्वेंट के साथ सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और तभी नंदिनी की मम्मी ने उदय और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैंने अपनी कल की टिकट बुक कर ली है, मैं कल वापस मुंबई जा रही हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात कही उदय नंदिनी की तरफ देखने लगा और उसने कहा, लेकिन मम्मी आप अभी तो आई थी, थोड़े दिन और रुकती और वैसे भी हम भी तो वापस मुंबई चलेंगे ना, और मैंने तो अपनी और नंदिनी का टिकट अभी बुक ही नहीं किया। आपको मुझे बताना चाहिए था, हम एक साथ तीन टिकट बुक कर लेते। जैसे ही उदय ने ये बात कही उदय के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी नंदिनी ने कहा, मम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप फ्लाइट का टिकट बुक कर रही हैं। जैसे ही नंदिनी ने ये सवाल किया नंदिनी की माँ ने कहा, मैं तुम लोगों को बताने वाली थी, लेकिन इतना बोलते बोलते वो चुप हो गई। तभी उदय के पापा ने उदय और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। उदय ने जैसे ही अपने पापा की ये बात सुनी उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा। तभी उदय की मम्मी ने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, उदय जब तुम्हारा घर यहाँ पर है और तुम्हारी कंपनी यहाँ पर है तो फिर तुम वापस मुंबई क्यों जाओगे, और वैसे भी अब तो हमने नंदिनी को इस घर की बहू भी मान लिया है, तो फिर घर की बहू घर छोड़कर कहीं और रहने क्यों जाएगी, मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम लोग अब यहीं रहोगे।
नंदिनी ने ये बात सुनी और वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। तभी उदय ने अपनी मम्मी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप। टू बी कंटिन्यूड।